Hold on to your seats for tonight. We have on the show sprint queen Duti Chand, current national champion in the women's 100 meters dash, India's best bet for an Olympic medal in the 100 meters, a feat no Indian has achieved. For the way she's risen from poverty to become the fastest Indian woman, for the way she won a landmark legal battle and made a comeback after being banned from competition for hyperandrogenism, for being a torchbearer for the LGBTQ community in a conservative country like us, Duti Chand is our everyday hero, our Indian idol, our Olympic hope on We the People tonight. Duti, thank you so much. Aap aaye ho yahan pe. Let's start at the beginning. Aapki origins bahut bahut humble thi. Aapke mata pita weavers hai Odisha mein.
Ji. Pehle to sabko namaskar. Mera jo family bahut poor family hai. Six sister, one brother, mummy daddy ko mila ke total 9 member. मेरा जो पापा का जो काम है कपड़ा बनाने का काम है उसी फैमिली में यहाँ तक पहुँचना बहुत स्ट्रगल का लाइफ है मेरा. रनिंग के लिए पाँव में शू नहीं था, नदी के किनारे में बालू के ऊपर भागती थी मैंने,
रोड के ऊपर भागती थी, कोई
ट्रैक कुछ भी नहीं थे इस टाइम में. सिर्फ दीदी ने मुझे प्रेरणा दिया था कि तूने भागे, लेकिन किस लिए भागना है भागने का शौक भी नहीं था मुझे इस टाइम में. दीदी ने कहने पर मुझे रनिंग करने का, मम्मी ने वादा किया था कि तू रनिंग कर.
तो ये आपकी दीदी सरस्वती है,
दीदी सरस्वती
जो अपने आप एथलीट थी, वो कबड्डी खेलती थी मगर उसने फिर दौड़ना शुरू किया क्योंकि उसको नौकरी चाहिए थी, पुलिस की जॉब चाहिए थी और एप्लीकेशन के क्वालिफिकेशंस थी कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग. तो बेसिकली आप जॉब के पीछे दौड़ रहे थे.
कहना हमेशा दुनिया में जॉब के पीछे सब भागते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ काम करते हैं, हमको एक नौकरी मिल जाए, इसलिए हमेशा बेकारी का संख्या बढ़ती है, कोई बोल के हमेशा आंदोलन भी होता है. तो पुअर फैमिली है, अच्छा पढ़ाई करके जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, तो इसलिए एक रास्ता था स्पोर्ट्स. हम स्पोर्ट्स करेंगे तो सरकारी के तरफ से स्पोर्ट्स कोटे में एक जॉब मिल जाएगा तो हमारा परिवार का सिचुएशन बदल जाएगा. खाने के लिए तो कुछ नहीं था, सिर्फ चावल और जो सब्जी था वो पखल भात आपको सुनाएंगे उड़ीसा का चावल पानी वाटर राइस, तो वही चावल खाते थे. हमारा घर में सिर्फ एक बार सब्जी बनाते थे दिन में, एक जो दिन में होता था जो होता था वो शाम को फिर खाते हैं उसको.
बट यही सिस्टर है आपकी, सिस्टर सरस्वती, जिसने आपको ट्रेन किया, जिसने आपको पुश किया कि ये करो, जिसने आपको मतलब डिस्कवर किया कि आपके पास इतनी टैलेंट है और रॉ पावर है और यही सिस्टर ने आपके साथ अभी लड़ाई कर रही है.
घर में भाई बहन रहेंगे तो छोटा मोटा तो झगड़ा तो होगा, तो जब छोटे होते तो कुछ भी झगड़ा होता तो मम्मी डैडी इसको संभालते, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो पब्लिक इसको संभालते.
वो खुश नहीं है कि आपने किसी को चुना है अपने सेक्स से, मतलब यू चोजन अ पार्टनर हु इज अ गर्ल.
मेरी दीदी के हिसाब से तो गर्ल्स को गर्ल्स को लाइक करेगा, इसको पसंद नहीं है. बेसिकली आज के दुनिया में देखो, एक लड़के लड़का को पसंद करते हुए लड़की को रुका देते कि नहीं इसको शादी नहीं कर पाएगी, इसके साथ नहीं रुक पाएगी, दूसरी जगह में इसको शादी कर देते. तो सबके मर्जी को हम देखेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे दुनिया में, और हमको जीने का अधिकार सबके पास है, तो खुद का लाइफ किसके साथ सेटल करना है इसके ऊपर है. और मेरे हिसाब से मेरी बॉडी जिसको लाइक करते हैं मैं इसको साथ रहना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं दुनिया को बताया कि मुझे पसंद है लड़की, मैं लड़की के साथ सारा ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, तो इसमें कोई क्राइम नहीं है, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ मैं. तो लेकिन दीदी किस लिए रुका रही है इसको पता होगा सर,
शायद क्योंकि उसने आपके अंदर इतना इन्वेस्ट किया है.
बेसिकली जैसे मम्मी डैडी ने बच्चा को पैदा करते थे तो पैदा से होने के जब तक तो बहुत इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब क्या जो हमके ऊपर इन्वेस्टमेंट है इसके बाद हमें सर जिंदगी भर मानना पड़ेगा. हमारी भी एक पर्सनैलिटी है, 18 साल के बाद ये तो गवर्नमेंट दी, तो गणतंत्र का राष्ट्र है, सब बोलते हैं कि हमारे पास स्वाधीन है तो हम सब कुछ कर सकते हैं. हमारा जो कर्तव्य है हम कर्तव्य करेंगे, मम्मी डैडी ने पैदा किया इसका सेवा करना हमारा कर्म है, लेकिन ये मतलब नहीं कि ये बोले कि तू ऐसे रहो ओके नहीं शादी करके ऐसे रहो फिर इसको शादी करो. इसके बाद सुन के हम थोड़ा जिंदगी बिता सकते हैं, अब मन रहेगा दूसरे के पास और बॉडी रहेगा दूसरे के पास तो कैसे हम जिएंगे.
और दूसरी इट वॉज योर पार्टनर, आपकी पार्टनर ने आपको इनकरेज किया कि लेट्स कम आउट, कि आपको बोलना चाहिए इसके बारे में.
जी बेसिकली आज की दुनिया में तो शादी है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, आप शादी करेंगे तो दुनिया इसको प्रूव माने कि हस्बैंड वाइफ है, अब बिना शादी में जितना घूमते फिरते रहो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलेंगे लेकिन कोई मान्यता नहीं देंगे कि आप दोनों पार्टनर रह करके. तो इसलिए तो लड़की मुझे बोला कि मेरी फैमिली तो मुझे 25 ईयर तक या 30 ईयर तक मुझे छोड़ देंगे आपके पास रुकने के लिए, लेकिन जिंदगी भर रुकने के लिए तो मुझे कोई परिचय चाहिए और वो परिचय मुझे तू दे, नहीं तो फिर मैं तेरे साथ कैसे रुकूंगी, क्योंकि मेरे फैमिली मेरा गांव वाले सब मुझे बुरा बुरे नज़र में देखने लगेंगे और बुरा बात बोलेंगे, मैं इसको सह नहीं पाऊंगी, तो आप कुछ ना कुछ करके हमको प्रूफ दो. तो मैंने बोला ठीक है तू चाहती है तो मैं प्रूफ दिला दूंगी, लेकिन तेरे फैमिली को पहले समझाओ, तेरा फैमिली राजी होंगे कि नहीं मुझे सारा जिंदगी भर मेरे साथ रखने के लिए। तो फैमिली को अप्रोच किया, फैमिली ने इसका बात सुना, फैमिली ने इसको बोला कि हाँ ठीक है, तू मेरी एक ही बेटी है, तू जैसे खुशियाँ रहना चाहती है तो वहाँ ठीक है। तो उन्होंने जब मुझे बोला कि हाँ तुम मेरी बेटी के साथ रह सकते हो, मेरी बेटी की खुशियाँ मेरे साथ हैं, तो फिर मैंने कदम उठाया कि ये बात दुनिया को बताना चाहिए, तो फ्यूचर में हम साथी होने रह के साथी होके रहने के लिए तो दुनिया को बताना पड़ेगा। तो ये रिलेशनशिप बेसिकली फैमिली को बताया मैंने, मेरे रिलेटिव बारे को बताया, सबने पहले सपोर्ट किया मुझे, सबने बताया अभी तो तू खेल रहे, खेल बैक के ऊपर ध्यान दे, जब फ्यूचर में आएगा नॉर्मल लाइफ को, तू जब वापस आ जाओगी तू किसके साथ रहोगी तेरे ऊपर डिपेंड है, हम उस टाइम में देखेंगे। तो मैं ऐसे ही मन में रखा था मैंने, हमारा दोनों का रिलेशन भी बहुत अच्छा चल रहा था, अभी तो नहीं काफ़ी 2 साल से अभी चल रहे हैं। वो बात मेरी दीदी को पता चल चुका था, दीदी ने मुझे हमेशा कहा था कि दीदी तू इस लड़की के साथ रिलेशन छोड़, बातचीत मत करो। वो कभी कभी लड़की को गाली करता था, इसको घर वालों को भी जाके गाली गलौज करता था, तो हमेशा वो रो के मुझे बताते कि तेरी दीदी ने हमेशा मुझे ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं। और वो दीदी क्या करता था ना, दूसरी लोग को बोल के उनके घर को जाके भी गाली गलौज करता था। मेरा रियल दीदी, हमें नहीं चाहती कि दीदी को बुरा बोलने के लिए, लेकिन मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है, दीदी जो जो किया है मेरे साथ ने। तो इसलिए मुझे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था माइंड में, मैं ठीक से ना ट्रेनिंग कर पाती थी, ना ठीक से खा पाती थी, ठीक से सो पाती थी, कोई ना कुछ बोलते थे इसके बारे में कि तेरा दीदी ऐसे बोल रहे तेरे बारे में, ये क्या सच है गलत है। तो ऐसे ऐसे बोल बोल के मुझे पूरा दबा के रखा था 6 महीने तक। तो फिर बाद में मैंने इतना गुस्सा हो गई और इतना अंदर से टूट गई, फिर दीदी को बोला कि तू ऐसे ऐसे बोल रहे, मैं रियल में शादी करके दिखा दूंगी। तो ऐसे ऐसे जब बोल दिया तो दीदी ने खुद नहीं मीडिया को सबको बता दिया कि मेरा सिस्टर शादी करने के लिए जा रही है, 25 को इसका एंगेजमेंट है। तो ऐसे ऐसे बोल के सब मीडिया को बता दिया। तो मीडिया वाले ने मुझे सब फोन करके पूछा कि दीदी बात सच है गलत है।
so मैंने आउटेड बाय योर ओन सिस्टर।
हाँ, लेकिन बाद में फैल गया पूरा न्यूज, तो धीरे धीरे आ गया जब मुझे सब कुछ ना, मैंने हाँ बात सच है, लेकिन नहीं अभी शादी का प्लानिंग कुछ नहीं है मेरा, मेरा जो प्लानिंग है स्पोर्ट्स के ऊपर, मुझे देश के लिए खेलना है, देश के लिए मेडल लेना है।
बट द आयरोनिक ट्रेजेडी इज दैट इन इंडिया यू कांट गेट मैरिड, आप शादी तो अभी तक तो नहीं कर सकते हो, बट लेट्स गो अक्रॉस टू समबडी हु इज हैप्पीली मैरिड विद अ पार्टनर फ्रॉम द सेम सेक्स। वी हैव केशव सूरी द होटेलियर जॉइनिंग अस। केशव, यू आर वन ऑफ द पिटिशनर्स हु चैलेंज्ड सेक्शन 377 इन कोर्ट। व्हाई डिड यू डू इट? व्हाई डिड यू पुट योर फेस on this cause? You didn't need to, because you're sheltered, and honestly you're cushioned by your background, your privilege, you have woke parents who supported you.
Thank you so much for having me on this beautiful show, and especially on this conversation that you are having today, especially when you have my hero who is Dati. I really would like to profess my love for her, because you know the kind of courage that she's shown for being the first ever athlete to come out in the country in a population of over 1.3 billion people, and you know a country that is over 70 years to have our first out athlete, it's really courageous, it's really amazing. I mean, when the 2013 judgment came out, which reversed the 2009 High Court's judgment on, and we were suddenly pushed back into the closet. You know, there was this statement made by one of the judges who said that this is a minuscule minority, and who are these gay people? Do you know any gay people? He asked one of the lawyers. And so that sort of struck a chord when I was like, no, we need to speak up. You know, you're right. I come from a place of privilege. I do have my parents who supported me. I do have my family that supports me. I have my whole army of 3,500 team members who support me, follow my cause. I could have just lived in that and lived in that bubble. But no, I was like, no, it's important for a person like me who can open doors. What can a person in privilege, in inverted commas, do is actually use that privilege for something that is beyond them and their selfish needs. Of course, it's a little selfish too, because I am personally, I'm out, I'm married to my husband, who is French. I'm lucky that in a country like France, it is legal for us to be married, still not so in India. But beyond that, when it is a whole nation of queer people, and we are a nation of queer people, it was time for people that are in a situation of privilege or that can accord change, it is time for them to make that change. Again, I think it was high time, and that's why I'm so, again, coming back to Dati, it's like we need representation if we really want to normalize the whole movement.
And talking about normalizing, you celebrated your anniversary this weekend. Congratulations. How has being married actually changed life for you?
Thank you. Thank you so much. You know, I'm now inching towards the right for divorce and the right to get alimony because, you know, I mean, but no, it's been great. What I didn't expect it to be was that, oh my, you know, my act for getting married with Cyril was never an act of activism. It was more an act out of love that, you know, as my sisters have gotten married, as my parents have gotten married, as my friends have gotten married, I also wanted to get married to the person I've been with for 10 years. We've shared a home for 8 years. And, you know, there was an issue that happened in France in their last election where there was a political party that was very radical about removing, you know, marriage equality. And they were almost going to come into power. And, you know, that kind of shook us up and said that, oh, my God, if that happens, then we don't even have the right. We don't have it in India. We won't even have it in France soon. So we were like, you know what, let's do it. If we don't do it now, we're never going to do it. And then when it sort of blew up and became a message of hope for a lot of people, not just in India, but also in France, I'm, you know, truly humbled by it, but honestly, it's like any other marriage. We're looking for an exit.
And Keshav Suri, what would be your message to Dhuti Chand? She's been emboldened to come out by the Supreme Court verdict, but she's facing a lot of backlash.
Namaskar, Dhuti. I want to say that Keshav Suri Foundation, Lalit, Kirisu, हम सब आपके साथ हैं जो आपने करेज और डिटर्मिनेशन दिखाई है वो अगर हमारे पास 10% भी होता तो हम कहाँ कहाँ पहुँच जाते आपको ये दिखाना है कि पूरा जो आप हमारी कंट्री है वो आपके पीछे है आप एक आइकॉन हो आप होप हो हमारे देश के लिए और आपने जो किया है वो यू नो बहुत लोग नहीं कर पा सके जैसे हेटरोसेक्सुअल लोगों को बोला जाता है कभी नहीं ये नहीं कभी बोला जाता कि आप अपनी सेक्सुअलिटी को हाइड करें तो हमें क्यों बोला जाता है और ये पॉइंट कि आप जैसे हम हैं जैसे आप हो हम डेफिनेटली अपनी सेक्सुअलिटी रब करेंगे सबके मुँह पे जैसे हेटरोसेक्सुअल लोग अपना शर्ट पहनते हैं वैसे हमारी सेक्सुअलिटी है अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो कहीं और देख सकते हैं हम तो अपनी लाइफ जिएंगे और हम जिसको चाहेंगे और जो भी हमारे पार्टनर हैं उनके साथ हम जिएंगे और थैंक यू Dhuti फॉर शोइंग दैट कि ये पॉसिबल है हमारे लिए और हमारी जो कम्युनिटी लोगों के लिए
Dhuti Keshav Suri तो लकी है उनकी शादी हो गई है वो पेरिस में फ्रांस में उन्होंने शादी की है क्या आपने भी ड्रीम किया है कि आपकी भी शादी होगी आपकी फैमिली होगी आपके बच्चे होंगे
जब शादी करेंगे तो फिर फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि आज के दुनिया में तो ज़्यादा फैमिली को कोई सब देखते नहीं मेरा भी ऐसा सपना है फ्यूचर में मेरे पार्टनर ने मुझे हमेशा कहता है कि हम भी फ्यूचर में एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे इसको अच्छा पढ़ाई करेंगे और तुम्हारे जैसे पोस्ट पर्सन नहीं बनाएंगे इसको अच्छा पढ़ाई करेंगे और वकील बनाएंगे जो हमारा हर मुश्किल के बुरे वक्त के टाइम हमको मदद करेगा तो ऐसे ऐसे बातचीत होता है हमेशा रात में सोने के टाइम में तो मन में ऐसा ख्याल है देखते भगवान के दुआ से हमारे इंडिया में वो शादी का रूल हो जाएगा तो मैं जब शादी करूँ पूरा दुनिया देखेगा और जब फैमिली बसाऊँ पूरा दुनिया देखेगा
मैंने आपकी एक इंटरव्यू सुनी थी जहाँ पे आप कह रहे थे कि जब आप 18 साल के थे आप आपके पास मतलब एक बॉयफ्रेंड था आप दोनों एक रिलेशनशिप में थे आप फ़ोन पे बात करते थे रात को हर दिन फिर ऑफ कोर्स 2014 में आपके साथ जो हुआ था वो हुआ फिर वो आपसे पूछने लगे कि आप लड़का हो कि लड़की हो फिर आपकी रिलेशनशिप टूट गई थी
बेसिकली मेरे रिलेशन बॉयज़ के साथ हुआ था 2008 में 2008 में मैं शायद 7 क्लास में पढ़ाई कर रही थी इस टाइम में लव वगैरह क्या होता है मुझे मालूम नहीं था इस टाइम में सिर्फ उन्होंने मतलब मुझे आई लव यू बोला था हमेशा तो मुझे पहले इसका मतलब क्या है मुझे क्यों हमेशा बोलते रहते बोले नहीं मैं तुझे प्यार करना चाहती हूँ मैं तुझे शादी करना चाहती हूँ मुझे शादी का एज अभी तक हुआ नहीं क्यों शादी करेंगे मेरी मम्मी डैडी सुनेंगे तो मुझे मारेंगे लेकिन 2014 में जब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स आया तो नेगेटिव न्यूज आया पेपर में तो वो देख के मुझे पूछा कि ऐसा ऐसा क्यों न्यूज आ रहा है सच में है या गलत है कैसा है तो उस टाइम में तो इतना मालूम नहीं था मुझे, जब मेरे बारे में सारा ट्रीटमेंट जो मेडिकल का रिपोर्ट आया, मैंने देखा कि ऐसा सा है करके, तो मैंने बोला हाँ तो आप जो सुन रहे हैं सच है, लेकिन पता नहीं मुझे क्या होगा फ्यूचर में, मुझे पता नहीं आप क्या चाहते बोलो। नहीं मैं आपसे रिलेशन नहीं रखना चाहती हूँ, लेकिन इसलिए ना लोग मुझे बुरा बुरा बोल रहे तेरे बारे में, और मेरा फ्रेंड लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, और ऐसे मेरा फैमिली तुझे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो मैं रिलेशन छोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने अभी तो रिलेशन बनाया नहीं था तो छोड़ने के कैसे तो फिर मेरे वाला ठीक है आपके मर्जी में आप, तो फिर हम रिलेशन टूट गया था उस टाइम में।
तो आपने इंटरेस्टिंग बात की है कि आप और अपने पार्टनर होप कर रहे हैं कि आपकी जो बच्चा होगा वो लॉयर बनेगा, तो आपकी लाइफ में भी लॉयर हैज प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल। वी आर टॉकिंग अबाउट मेनका गुरुस्वामी, शी जॉइंस अस। मेनका, यू आर वन ऑफ द लॉयर्स हु चैलेंज्ड आर्टिकल 377 इन कोर्ट, एंड दूति सेज शी गॉट द करेज टू कम आउट आफ्टर इंडिया स्टॉप कोर्ट स्क्रैप दैट कॉलोनियल एरा बैन ऑन गे सेक्स लास्ट ईयर। हाउ डू दे मेक यू फील?
यू नो, दूति इज अ रियल इंस्पिरेशन, शी इज अ ट्रू चैंपियन, I think both on the track and off the track. As a member of the legal team that litigated the case, Navtej Singh Johar, I mean, I know I speak for all the lawyers to say that, you know, we are deeply, deeply humbled and gratified that this has gone in some small way towards Duthi's, towards Duthi's courage, really.
And Minika, you know, much has been said about what transpired in court that day and the force of your argument. Your strategy basically was to highlight the brutal human cost of Section 377. And there's this quote of yours that's gone viral. It says, "How strongly must we love knowing that we are convicted felons?" And that you were basically saying it's not just a sexual act. This love must be constitutionally recognized. And that quote really could not be more apt for Duthi. How deeply must she love to dare risk it all?
Yeah, you know, I mean, I think that Duthi's case is the apt illustration. I mean, she is India's child, and you can see the price that she is paying. But also, I think that she has had the courage to say that I will pay this price because I am in this relationship with this person who I love. But I think the point is that the judgment does say very categorically that there is a right to non-discrimination, and that, you know, society, Indian society, is not intended to be heteronormative. Public spaces aren't intended to be heteronormative. So I think that, you know, what Duthi is doing is not just personally courageous and important for her and her relationship, but she has actually done something so inspiring for so many LGBTQ Indians. And also, this is exactly the kind of courage that makes social change. And you can see the kind of support that she has got. We are all inspired by her. We are all inspired by courageous acts in India. And Duthi Chand really personifies that kind of courage which is often displayed in India.
But Duthi, especially, Minika, had so much to lose. Coming out stories are never easy. But she's India's hottest sprinter. She's coming out in this, you know, deal-making, PR-determined world where athletes are brands, there are fans, there are sponsors. I mean, all of this to think about.
No, I think one, exceptionally brave in her case. But I think, two, what is true for all the petitioners that my colleagues and I represented, whether it's the first five petitioners in Navtej Singh Johar, who may have been more privileged, but certainly in their own life and in their own lives had experienced deep discrimination. I think the point when it comes to difference, whether it's sexuality, whether it's gender, whether it's caste, you know, these differences, you know, each bring with each on each structural ground, bring a certain kind of hurt, disadvantage and discrimination that is experienced. And I think the question really is that what does the Constitution envisage, yes, in terms of alleviating that pain and that discrimination and making good for a certain kind of a commitment to an equal citizenship for all people. I think Duti's story is just simply remarkable. Where she comes from, what she does as a world-class athlete,
yes.
As a nation, we should be invested in Duti focusing on her training, and in Duti just being able to run as fast as she can humanly run. And in as much as we valorize other athletes, you know, the kind of support the Indian male cricket team gets, as a country, we should be providing that kind of support and cheer to this fine, fine athlete. So if our village is saying that, you know, we don't approve of this, as a country, we should be saying she is our child too. She is our sister. She is our compatriot. She is our icon. And we support her. We embrace her. So in many ways, I think Duti's case is telling us that this is now the next step.
Yeah.
The law has fallen. How do we now change as a country?
Yes. Mirika, you couldn't have said it better. Thank you for joining us from New York. Before you leave, any message for Duti?
Just to say this, that Duti, aap to hum sare logon ke liye aap hero hain. Aap na keval samvidhan aapke saath hai, par ye desh aapke saath hai. Or, you know, as part of this legal team, aap hume inspire karte hain. So hum aapke saath hain, hum aapke peeche hain, and we are really, really, truly behind you.
Thank you. Duti, matlab... क्योंकि सिर्फ ये नहीं हर्डल था जो आपने ओवरकम किया है 2014 जुलाई में जब आप ट्रेन कर रहे थे आईएएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए उस समय आप एक मेडिकल चेकअप के लिए गए थे फिर क्या हुआ था
बेसिकली 2014 में एशियन गेम कॉमनवेल्थ गेम के लिए दोनों में सिलेक्ट हो गई थी मैंने तो उससे एक महीना से पहले मुझे कहा गया कि दुति तुझे डोप टेस्ट देना पड़ेगा मैं बोला ठीक है मैं तो हमेशा डोप टेस्ट देते हाँ डोप टेस्ट हमेशा देते तो जब गया मैंने डोप टेस्ट के बजे यूरिन के बजे उन्होंने ब्लड लिया तो मैंने बोला ब्लड लेना था ब्लड जो यूरिन लेना था ब्लड क्यों लिया तो उन्होंने बोला कि नहीं हमको ज़रूरत है ठीक है जो ज़रूरत है ले लो फिर मतलब ब्लड के बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराया MRI कराया सब कुछ कराया मैंने ये सब देख के थोड़ा हैरान हो गया मैंने
मतलब अल्ट्रासाउंड इन्वेजिव प्रोसीजर्स थे मैंने सुना आपको मेल डॉक्टर्स थे आपको
हाँ, पहले से पूछ पहले तो दो दिन फीमेल में टेस्ट करवाया सेकंड में मेल डॉक्टर आके चेक किया
तो ये मेल डॉक्टर्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे मतलब बॉडी हेयर के बारे में पीरियड्स के बारे में
सब कुछ पूछ रही थी इस टाइम में लेकिन इतना मैं तो छोटी थी इतना जानकारी नहीं था दुनिया के बारे में मैच्योरिटी भी नहीं था लेकिन हमेशा डर रही थी उन्होंने बताया कौन सा क्रीम लगा रहे हूँ फेल अभी लगा रही हूँ तो बोला तो लगे फेल अभी नहीं और कुछ लगा रही हूँ बोले और क्या लगाऊंगे फेस में नहीं आपके हेयर फेस में हेयर क्यों आ रही बोले हेयर तो सबके फेस में आते मेरे को थोड़ी ना आते बोले कि तुम्हारा बॉडी पूरा खोल के दिखाओ बोले आपको क्यों दिखाऊं आप लड़का है नहीं आप कोई लड़की है आप भी लड़का है ऐसे मुझे बताया तो मैं बोला नहीं मैं मेरा बॉडी खोल के आपको नहीं दिखा पाऊंगी तो बोले हाँ तुम दिखाओ नहीं तो तुझे ब्लेम करा दूंगी पेपर में दे दूंगी ऐसे ऐसे बहुत डरा है मुझे तो फिर मेरे साथ में जो मैडम गई थी एडवाइजर वो साइन नहीं भेजा था उन्हें बोला दूती नहीं भेजोगे तो तुझे बहुत डरा है मुझे तो फिर मैंने कपड़ा खोल दिया उन्होंने क्या देखा मुझे समझ रहे कुछ बताया नहीं मुझे फिर बाद में सारा टेस्ट होने के बाद टीम से जब जाने था तीन दिन से पहले मुझे बोला कि आप नहीं जा सकते बोले क्यों नहीं आपके बॉडी में हार्मोन ज़्यादा है ठीक है आप टेस्ट करोगे मैं ये चाहती थी कि हमारा
और परमिशन नहीं ली गई थी जो लीगली जो परमिशन लेना चाहिए था वो तो नहीं ली गई थी और फिर आपको आप एक दिन उठे आपको आपने पेपर में देखा कि आपकी पिक्चर पेपर में थी एक बड़ी हेडलाइन थी अथॉरिटी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ने किसी ने आपको फोन कर नहीं बताया था तो आपको मतलब पेपर से पता चला
पेपर से और हेडिंग डाला था कि दुती का जेंडर टेस्ट हुआ था दुती लड़की नहीं है लड़का है और लड़की के साथ एक बहुत दिन से खेल रहा था छुप के इसलिए इसको AFI टीम ने साइन ने पकड़ लिया तो वो बात जब पूरा वायरल हो गया दुनिया में तो सब लोग मुझे बुरे नज़र में देखने लगा मेरा करियर को मेरा पर्सनैलिटी को लेकर पूरा बुरा बुरा बात बोलने लगा मैं जब वो इतना रोई मैंने खाना पीना ठीक से भी नहीं किया मैंने हमेशा रोती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया का इंसान नहीं हूँ मैं दूसरी घर से आ गई इधर से तो ऐसा बुरे नज़र में सब देखने लगा और मैं इस टाइम में एक लड़की के साथ मेरा कमरा था इसको इमिडिएटली निकाल दिया और मुझे अकेले कर दिया कमरा में वो बोला कि तुम लड़की के साथ कभी भी मिला चुना नहीं करना है ऐसे ऐसे बहुत मुझे इस टाइम में सजेस्ट किया है जो हॉस्टल का वार्डन तो फिर मैंने पूरा अकेले हो गया ट्रेनिंग भी ठीक नहीं कर पाई मैं जब गया तो कोच ने बोला कि इसलिए ट्रेनिंग करने के लिए आई थी तुझे तो टीम से नहीं ले रहे तू जाओ घर जाओ, ऐसे बताया। तो फिर मैं अकेले रनिंग किया, 2-3 राउंड अकेले रनिंग किया, अकेले ट्रेनिंग किया मैंने। बहुत तकलीफ हुआ उस टाइम, बहुत स्ट्रगल किया मैंने उस टाइम में। तो फिर जब घर आई, घर में भी बहुत दिक्कत हुआ मुझे, पूरा गांव वालों ने इकट्ठा होकर मेरे घर के सामने खड़े थे। इस टाइम में ऐसा लगता था जब मैं इंसान मर के आई हूँ। मैं जब जाते थे तो मुझे बुके वगैरह दे के फेलिसिटेशन करते थे जब मेडल लेके, जब इस दिन गया तो सब ऐसे नज़र में पूरा लाइन होकर देखते, दूति रियल में तू क्या है लड़का है ना, तो ऐसे ऐसे बहुत बुरा नज़र जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो ऐसा ऐसा लैंग्वेज यूज किया था मेरे साथ ने, और 10-15 दिन में घर से बाहर निकल नहीं पाती थी, बहुत दुख का बात।
और ऑफ कोर्स इसके बीच में मीडिया तो होगी, मीडिया आपको फोन कर रही होगी।
मीडिया तो ऐसा पूछते थे जैसे लगता है कि जैसे वकील पूछते हैं ना, किस घटना में कितना कैसे हुआ है, पूरे ऐसे डिटेल्स लिखने की पूछते थे। लेकिन
दूती, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट, हर कहानी की दो स्टोरीज होती है। शायद में हम देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी कहेगी कि अब हम इंटरनेशनल फोरम में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी टेस्ट होंगे, इंडिया को एम्बैरस हो सकती है, अगर शायद कुछ था तो उनके साइड नज़र से देखोगे तो शायद वो बोलेंगे कि आप कॉमनवेल्थ गेम्स में जाओगे उसके बाद टेस्ट करेंगे तो फिर इंडिया एम्बैरस हो जाएगी।
वो तो गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट जैसे चाहेगा वैसे करेगा। ऐसे जाने से पहले ही जैसे बोलते ना, पहले जब वो बच्चा पेट में रहता है मम्मी उस टाइम में सोचते हैं इसको पैदा करना है या नहीं करना है। पैदा करने के बाद देखो ना बच्चा कैसा है, लड़का है या लड़की है। आप पहले क्यों सोच रहे कि लड़का ही नहीं है कि लड़की है। तो बच्चा पैदा होने के बाद जैसे दुनिया को पता चलता है कि हाँ ये इंसान कैसा क्या कर सकता है, तो ऐसे तो इनको उधर मेडिकल चेक होगा या नहीं होगा। मैं तो पहली बार नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो काफ़ी सालों से खेल रहा हूँ, इतने दिन से खेले कुछ नहीं होता था, और जाने से पहले 3 दिन से पहले मुझे निकल दिया।
इन द एंड यू ऑल्सो मेड हेडलाइंस बिकॉज द IAAF सजेस्ट, उन्होंने सजेस्ट की थी कि आप करेक्टिव सर्जरी करो या आप हॉर्मोन ट्रीटमेंट करो, मगर आप कह रहे हो कि हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आपके बॉडी में जो है नेचुरल है, आपने इंजेक्ट नहीं की है।
जी, जी.
तो डूइंग एनीथिंग लाइक दिस दैट वुड बी अननेचुरल फॉर योर बॉडी, राइट? तो आपने बोला मैं ये नहीं करूंगी एंड आई विल टेक यू टू कोर्ट, और आपने वही किया।
जी,
और फिर आप जीते।
हाँ, बेसिकली हमारा जो स्पोर्ट्स है वो तो वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन होता है, और हर कंट्री का इंसान सेम नहीं रहता, सबका ह्यूमन बॉडी सेम नहीं रहता है, किसका फैट ज़्यादा रहता है, किसका हाइट ज़्यादा रहता है, किसका माइंड दूसरा रहता है। तो इसलिए तो स्पोर्ट्स करते हैं हम, सब के साथ फाइट करके जो जीत होता है इसको ही हम जीत स्टार बोलते हैं। तो लेकिन उस टाइम जब ऐसे बोला मैंने तो देखा कि मेरा नेचुरल है, मुझे जीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग के लिए की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं मेडिकल किस लिए करूँ। तो मैंने पायसन मैडम से बात किया, पायसन मैडम तो एडवाइस थी गवर्नमेंट की तरफ से, साई तरफ से, उन्होंने मुझे जिस तरह एडवाइस दिया मैं इस तरह फॉलो किया।
और वी एक्चुअली आर वेरी लकी टू हैव पायोशनी जॉइनिंग अस फ्रॉम लंदन। द स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैड ब्रीच्ड द कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटोकॉल्स बाय रिवीलिंग दूती'स आइडेंटिटी बाय मेकिंग दिस केस पब्लिक। एज यू जस्ट हर्ड फ्रॉम हर, इट वॉज ट्रॉमैटिक, इट वॉज ह्यूमिलिएटिंग, इट वॉज अनफेयर, बट इन द एंड इन अ सेंस दिस पब्लिसिटी केम अराउंड टू हर हेल्प। अराउंड 600 kilometers अवे फ्रॉम वेयर शी वॉज इन कोलकाता, देर वॉज अ स्टोरी इन द न्यूज पेपर दैट कॉट द आई ऑफ डॉक्टर पायोशनी मित्रा। शी इज अ रिसर्चर An activist in the area of gender and sports, who then reached out to Duti, as Duti just said, and urged and helped her to challenge the International Association of Athletics Federation on its rule of hyperandrogenism, and the rest is history. We're lucky to have Dr. Payoshini Mitra join us from London. Payoshini, why exactly did you reach out to Duti? Duti is not known to shy away from a challenge. How and why did the treatment that she revealed or received make you want to reach out to help her?
I actually went to see her in her village. We have been together, and the whole idea of, you know, non-compliance or doing something which is not necessarily acceptable to all is not new to Duti. Yeah, she fought this case at the age of 18, which was a landmark case in the history of women's sports. So obviously, you know, she's always had that special courage. And I'm very happy for her at this point. At the Court of Arbitration for Sport, this was the first time a regulations was challenged. It was not only, you know, this particular issue, which now, you know, Ms. Semenya, Caster Semenya is challenging, right, has challenged at the Court of Arbitration for Sport, and also, you know, now at the Swiss Federal Tribunal. I am also part of her experts team. But it wasn't Duti who's
just the first person to raise this issue at the court, but she was also the first ever athlete to have, appealed against a regulation of an international federation at the Court of Arbitration for Sport.
I mean, she's a trailblazer in many, many ways. Thanks so much, Payoshini, for making time to talk to us today from London. Thanks for that. But Duti, a question to puchna padega. After everything that you've been through, aapke saath jo bhi hua, aapne abhi explain kiya. Fir jab aap came out, aapne bola tha ki aap ek relationship mein ho, aapke partner ke saath jo aurat hai, तो आपको नहीं लगा कि all these questions will come up कि देखो अब ये तो लड़का है जैसे मैंने सुना पीटी उषा ने भी पूछा है कि अगर आप कह रहे हो कि आप एक लड़की के साथ relationship में हो तो फिर से this whole story will come back up 2014 जो आपने जीता है आप court में गए थे all the way to the top to the like supreme court of the sporting world मगर फिर से वो ही question नहीं आएगा आपको उसकी डर नहीं थी
और लड़ी आ चुकी है हमेशा मुझे उड़ीसा में वो लोग इस नज़र में देखते हैं अभी सब बोले जो 2014 में हुआ था कोई रियल सच है दो तीन लड़का है तो कोई ना कुछ बोलते रहते हैं लेकिन थोड़ी ना बातों को सुन के हम जिएंगे हमारा जो लाइफ है हम कैसे जिएंगे हमारे ऊपर डिपेंडेंट है तो मुझे पता था ऐसा बड़ा सिचुएशन होगा लेकिन मन में यही डर था कि फिर दोबारा ऐसे हो जाएगा तो फिर मुझे स्पोर्ट्स से निकल देंगे तो मैं कैसे खेलूँगी वही डर था ज़्यादा मैं स्पोर्ट्स को लाइक करती हूँ स्पोर्ट्स कैसे मैं और अच्छा खेल सकी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हूँ वही डर था मन में लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा निकाल दिया था कि ये अपराध नहीं है आप लिविंग रिलेशन में रह सकते हो तो फिर हिम्मत बढ़ा था बॉडी में कि हाँ मैं बताने के बाद भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स में रूल में ऐसा नहीं है लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे उनके इनको बात को सुन के मैं ज़िंदगी स्थिर नहीं कर पाएंगे लेकिन रूल के हिसाब से देखेंगे तो स्पोर्ट्स का रूल ऐसा कुछ नहीं है तो पता था फिर भी मैंने 2014 को जैसे हैंडल किया था अकेला ऐसा भी अभी हैंडल कर रहा हूँ मैं
बोलिए जो आपकी स्पिरिट है बहुत लोग अप्लॉड करते हैं we have Arjun Mathur. He's obviously needs no introduction. Everybody knows him as the lead actor of that Amazon Prime series, Made in Heaven. Arjun, Made in Heaven is a watershed moment for the entertainment industry in India because it's because of its realistic portrayal of gay characters. Thank you for joining us on the show. The We the People team especially loved it. I'll admit I binge-watched it one night and I regretted it the next day at work. But how difficult was it for you to play Karan Mehra? Did you gladly accept the role or did you debate it before accepting, you know, with your manager, your agent? Did you worry about whether or not it would affect your career?
Honestly, it wasn't on a day-to-day basis. It's really not any different to play a gay part than it is to play a heterosexual part. So it wasn't difficult on a day-to-day level because it's not like I had to behave any different or speak any different or, you know, kind of display my sexual nature in my behavior. The only part that I found difficult, perhaps being a straight man, is the intimate scenes with men, but that's pretty natural and you know, once you've made the decision to do the part, then you just go the whole way without fear. As for whether I accepted it immediately, I had a slight bit of hesitation, but not because it was a gay part, only because I had actually played gay parts twice before. And I genuinely believe that, you know, there are other actors out there who should be experimenting and kind of taking up these parts. But to be honest, it took one reading of the script for me to realize that it was me that had to do this and I did not want this to go to any other actor. So yes, I did jump at the opportunity.
So were you worried about being typecast then? Did they come to you because they thought you'd accept because you'd already played gay roles before?
No, as a matter of fact, they came to me thinking that I would probably refuse it because I had done it twice before. So In my first audition, they did not even tell me that it was a gay part. And then when I went in for the second time, that's when it was kind of revealed to me. And, you know, they were just kind of testing the waters. And in my first meeting with Zoya and Nitya, I went in with this reservation and I shared it with them. And all they said was, okay, read the script and see how you feel. And sure enough, you know, the loud voice that the show had, like the female voice that the show had, as well as my character and the stance that he was taking and the fight that he was fighting, I think, you know, I needed to be a part of all of it.
And interestingly, you just mentioned how playing Karan Mehra, you didn't have to behave any different or speak any different and, you know, display a sexual nature in your behavior. And that really is refreshing and unlike the caricature of homosexuality that we see on the screen, especially in Bollywood.
I think it really honestly comes down to a sensibility of the filmmaker itself, because even through time we have had a Meera Nair, there have been like Fawad Khan, for example, in Kapoor and Sons.
Yeah.
Again, you didn't know till the very end of the film whether, you know, what his sexual orientation was. So it is, and I would definitely say that there are more and more filmmakers entering the industry and who are now willing to kind of really speak their own voice and, you know, represent these characters the way they should be represented as normal human beings. We are just, I think what we're trying to do is just normalize the representation, and I would like to think that I'm a part of that movement. Yeah.
And us too, hopefully. Lastly, Arjun, what has the response or the feedback been like? Is India changing, you feel?
I have to say that through this whole experience, and it has been really overwhelming for me, it's the first time in my career I've had a response like this to something. And the kind of response that it is very different. It's not like, hey, good job. It's not like, wow, amazing work. It's everything that is coming to me in my inboxes everywhere is all very personal, very, you know, very heartfelt kind of messages about, like, so many about people having gotten the courage to come out to their families because of my performance, or coming out at work, or I'll talk about this one which really touched me the most. It was from this 35-year-old lady who wrote to me saying that I'm a 35-year-old woman, I'm a mother of two young boys, and, you know, she had never, she didn't have anything against homosexuality, but she had never been too comfortable around them either. And she ended with saying that, you know, if tomorrow one or both of my boys grow up to be homosexuals, I am going to love them and support them. And that is thanks to this show. It's completely changed my mindset towards it. So I think, you know, definitely India is changing. Yeah.
Thank you, Arjun, for sharing that with us especially. And lastly, you know, you have a message for Duti Chand. She stands here. She's standing at a crossroads. This personal revelation threatens to overshadow her professional achievements. Any thoughts?
I would just like to say ke unse main bas itna kehna chahunga ke aap jo bhi kar rahi hain wo aapne jo kiya hai usse India ko, hamare samaj ko, sports ki duniya ko, ye bahut in sab ke liye ye bahut hi bada kadam hai. और मैं उनका सिर्फ शुक्रिया करना चाहूँगा, ऑनेस्टली, मैं कि उनमें ये हिम्मत है कि वो अपने आप के लिए ऐसे खड़ा रह सकी हैं, और सिर्फ अभी नहीं, सालों से उनके साथ जो हो रहा है, एंड और ये बहुत ही बहुत दुख की बात है कि इस छोटी सी बात से उनकी जो जितनी भी स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स हैं उन पर थोड़ा सा दाग आ रहा है. लेकिन ठीक है, ये लड़ाई है और ये लड़ाई वो लड़ रही हैं, और मैं तो ज़रूर उनके साथ हूँ. उम्मीद करता हूँ कि इंडिया उनके साथ है, दुनिया उनके साथ है. बस इतना ही. थैंक यू दीपी चांद.
इंडिया आपके साथ है दीपी. अब आप बताइए, व्हाट्स नेक्स्ट, फ्यूचर क्या है, एंड प्रोफेशनली फॉर एथलेटिक्स? ऑब्वियसली आई थिंक द नेक्स्ट बिग द ओलंपिक्स 2020.
अभी फ्यूचर देखेंगे तो बहुत लंबी है मेरा रास्ता. अभी 5-6 साल और खेलना है मुझे. नेक्स्ट ईयर को टोक्यो ओलंपिक आ रही है, इसकी तैयारी कर रहा हूँ. अभी इसका जो क्वालिफाई दिया गया है 11.15, अभी तक इंडिया में कोई भी लड़की इतना कम सेकंड में भागा नहीं 100 मीटर. मेरा जो पर्सनल बेस्ट है 11.24, जो मैं 2016 में किया था. फिर भी उम्मीद रखा है मैंने, 11.10 का टारगेट रख के ट्रेनिंग कर रहा हूँ. मेरा तो मेहनत चल रहा है, भगवान की दुआ से, सबका आशीर्वाद रहेंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा ओलंपिक को. भगवान का दुआ होगा तो ज़रूर मैं क्वालिफाई करूँगी और देश के लिए मेडल लेने के लिए कोशिश करूँगी. और स्पोर्ट्स करियर ख़त्म होने के बाद मैं इस ऑफिशियली मैं स्पोर्ट्स पर्सन, तो बच्चे लोग को ट्रेनिंग दिलाना पड़ेगा फ्यूचर में. और परिवार को तो हमेशा के लिए मैं देखूँगा, मेरे जो कर्म है, मेरा जो कर्तव्य है. और सोसाइटी के लिए भी काम करूंगा मैं, और पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन करना है मुझे.
पॉलिटिक्स
जी.
वाओ, अनदर फ्रंटियर गोइंग ब्रेकिंग डाउन, दैट्स ग्रेट. बट दीदी, आप मतलब आपको नहीं लगता कि जो ऑपोजिशन जो हुई है शायद ये ज्यादा है क्योंकि आप एथलीट हो और बहुत सारे कोचेस सबको लगता है कि फोकस करना चाहिए, मतलब डोंट गेट इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप्स, कीप योर फोकस ऑन द गेम, ऑन द स्पॉट, ऑन योर रेस, ऑन योर टाइमिंग, ऑन योर ट्रेनिंग, शायद वो भी हो सकता है कि नहीं?
ट्रेनिंग में तो कोई मिस्टेक नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहे हैं। मैं अंदर में डर गई थी कि मैं तो हैदराबाद में ट्रेनिंग करती हूँ ना हमेशा, तो जिस एकेडमी में रुकती है गोपीचंद एकेडमी, वहाँ पे तो बहुत अच्छा अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर लोग हैं, तो मैं खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाती थी मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे कैसा रिएक्शन मिलेगा, कोई ना कोई कुछ नज़र में देखेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी पुलाला गोपी भैया को, तो उन्होंने खुद फ़ोन कर बताया कि दीदी जो भी हुआ है कोई खराब नहीं है, तेरा हिम्मत का बात है, तूने इतना बड़ा कदम लिया, तू यहाँ पे आ जाओ ट्रेनिंग फिर कंटिन्यू कर, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं फेडरेशन को भी धन्यवाद दूंगी, फिर आए जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने टीम से तरफ से भी मुझे फ़ोन आया कि दीदी इसमें स्पोर्ट्स में तुझे कोई बुरा नहीं होगा, तू खेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, तू नहीं खेले तो फिर देश का मेडल चला जाएगा, देश के लिए नुकसान पहुँचेगा, तो ट्रेनिंग में ज़्यादा ध्यान दे। तो इतना मोटिवेट मुझे मिल रहा है जैसा लग रहा है कि मेरे और स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। ये तो पर्सनल लाइफ आज है, कल तो कोई ना कुछ बोलते रहेंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अभी स्पोर्ट्स के ऊपर कर रहा हूँ, इसके चीज में जितना
नहीं है मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सपोर्ट है आपके लिए?
हाँ बेसिकली तो पहले तो इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी सब सपोर्ट दे रहे हैं। अब मैं तो हमेशा ट्रेनिंग में ध्यान देते ज़्यादा, और अभी तक मैं कहीं भी हारा नहीं, अभी 5 साल से अभी तक नेशनल का नंबर 1 में चल रहा हूँ मैं, और खुद का रिकॉर्ड में 10 बार तोड़ चुकी हूँ मैंने 100 में।
Alright, on that note, let's quickly go in for a short break. The audience wants to talk to you, and we have a message from Mr. Gay India 2016 TEDx speaker. He sends us this message all the way from Amsterdam.
I'd like to wish my heartiest congratulations to Duti Chand for coming out and proud as one of the rainbow unicorns of the country. And I'm so proud of the fact that she's courageously come out. She's always been an inspiration and a beacon of hope for so many of us Indians already. And the fact that she's become the first Indian athlete to come out openly celebrating her love for her partner is just absolutely amazing. And the fact that she, of course, also comes from my home state, it makes me all the more proud. And I'm so, so glad that she's becoming, she's continuing to be the beacon of hope and inspiration for so many of us. My heartiest of congratulations again, and lots of love and luck to Ruthie. Thank you so much. Big love.
Welcome back. We're with the one and only Duti Chand, the Indian sprinter. There are lots of questions the audience has for her. Go ahead.
Ma'am, main aapko sabse pehle kehna chahunga ki aap kranti ho. Secondly, I'm still 17 and main apne aap, matlab agar main thoda young hota aur aap jaise log hote tab jo itna courage rakh sakte come out karne ke liye, to shayad hum mein se kai log hain jo itne mental traumas aur mental health issues ke through nahi jaate. We are really thankful to you ki aapne itna courageous step uthaya for the entire community.
Go ahead.
Pehle to ye shakti jisne sirf apna शहर, देश और संसार में जो नाम लाई है दुति, शी हैज चैलेंज कास्ट, क्लास, क्रीड, कल्चर एंड देन चैलेंज द पैट्रियार्की, पितृसत्ता को मुंह तोड़ जवाब दिया घर से निकलने में, स्पोर्ट्स स्टार बनने में, भारत के अंदर ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर अपनी पहचान बनने के लिए. और फिर हम कहते हैं कि नहीं, आप सिर्फ स्पोर्ट्स खेलिए पर आप अपने आप को भूल जाइए. हाउ इज इट पॉसिबल? It's very easy for me to wear a heel and come out and say I'm a gay.
Yeah.
This is what patriarchy gives
nice
us.
Nice heels, by the way.
This is what patriarchy gives us, right? But for a woman to come out who's not even allowed to talk about her periods, we still have Sabrimala in court.
So you're saying it's harder for a woman?
It's very hard for a woman. And think about those who are not independent, who are raped. A close relative or a family friend would be asked to have a sexual intercourse just to alter her therapy.
Correct.
So it's a sad situation, but
and much needs to change, but this is a start.
मेरा सवाल आपसे है, जो भारत है वो गांव में बसता है, गांव के एलजीबीटी भी लोग हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता और जहां मीडिया आज तक नहीं पहुंची है. आप तो खुद गांव से हो, गांव में भी ऐसे लोग हैं, आपको नहीं लगता ये मूवमेंट गांव तक अब जाना चाहिए?
गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग परंपरा संस्कृति को फॉलो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रूल हो या हाई कोर्ट का रूल हो, इतना फॉलो नहीं करते. इनके परंपरा संस्कृति हिसाब से जो है इसको मानते हैं. हमारा दुनिया में जानवर को नहीं माना है, रूल में लिखा हुआ है, लेकिन परंपरा संस्कृति का नाम है भगवान के नाम पर मार देते, बलि चढ़ाते. लेकिन मेरे हिसाब से गाँव को तो थोड़ा समझाना पड़ेगा, हम लोग ही समझाएंगे, क्योंकि हम कोई कदम आगे नहीं आएंगे तो दुनिया को कैसे पता चलेगा.
वी ऑल्सो हैव वासु प्रमलानी हियर, शी इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, इंडियन एंड इंडियाज फर्स्ट ओपनली गे comic. Also, can you also talk about, you use humor to raise awareness. And that's a very fine line because you're gay. And so it's also the concept of cry and you cry alone, but laugh and you laugh with me. How do you navigate that line?
So I usually use comedy is a very powerful tool of communication, and I use that to bring forward social issues. I talk about not just homosexuality. If I talk to people about rape, you know, whose fault is rape, then they might say it's the woman's fault, but after they hear my jokes, they're like, yeah, you know, it's 100% the rapist's fault, right? So I make sure I make that clear.
But often in India, you know, many stand-up routines we've seen in Bollywood, jokes are rude, they're full of innuendos, often the innuendos at homosexuality.
Sure. So there's two reasons for that. One is what they believe is the population will laugh at. And the second is every joke is a testament to who we are. We can't take away the person we are behind the comedian. And therefore, there are certain comedians I can't stand because their life experiences are so shallow. Mm. They just speak out of their head rather than actual experience. You know, that's
and you had
get.
Said somewhere, as you know, Duthi says, what the Supreme Court may decide doesn't percolate always down to the rural India. You had said that coming out is a class issue. The upper class is okay with it. The lower class doesn't care. It's the middle class that cares about what others think.
Yes, that's true. So the upper class believes they're above the law and above all mores. Take the example of smoking and drinking. Have you ever seen your maid smoke? Have you seen an upper-class woman smoking? Have you seen a middle-class woman smoking?
Yes.
So you can't test for sexuality as much because it's more in the public, in the upper and the lower. And in fact, in rural India also, there are homosexual relationships that are honored in villages. Those examples are also true. But the middle class is most concerned about what will the Joneses think.
Yes.
So that's my experience in India. Can I just say something?
Sure.
Aapke samne khada hona मेरे लिए इतने सम्मान की बात है मैं आई एम अ ट्रायथलीट एज वेल तो मैं एथलेटिक समझती हूँ आप 6 घंटे रोज ट्रेन करते हैं हम 1.5 घंटे से 8 घंटा रोज ट्रेनिंग करते हैं तो मैं समझती हूँ आप कितनी जोखिम से जाते हैं कितनी मेहनत से मैं ये कह रही हूँ एज अ कमेडियन आपको लड़की से प्यार है आप लड़की के साथ घर बसाना चाहते हैं ये आपकी मदद करेगा ओलंपिक मेडल लाने में आपको हम 5 लड़कियां दे देंगे और मैं खड़े होकर आपका सम्मान करना चाहती हूँ इतने गौरव की बात है आप हमारी देश की शान है हमेशा रहेंगी
थैंक यू Thank you. Thank you, Vasu, for coming. I know you just flew in from the US last night, so you made it. Thank you for that. I also want to go across to Harish Iyer, who's been waiting in Mumbai also to join in on the show. Harish, this story, Duthi's story, different from yours because Duthi has had parental opposition. You, on the other hand, your mother was your biggest support.
That's true. My mother has been a pillar of support, but she wasn't very supporting in the beginning. शुरुआत में वो मेरी सपोर्ट नहीं कर रही थी तो उन्हें भी थोड़ा वक्त लगा क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जब हम क्लोजेट के बाहर आते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो क्लोजेट के अंदर चले जाते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि ये जो सच्चाई है अपने बच्चे की उस सच्चाई को वो कैसे अपनाएं तो ये समझने में क्योंकि ये हमारी सच्चाई है हम बच्चे हैं दुती मगर हमारे माँ बाप की वो सच्चाई नहीं है ये वो सच्चाई वो जीते नहीं है तो कभी कभी उनको वक्त लग जाता है क्योंकि वो शायद 50 साल 60 साल से वो एक ही चीज सोच रहे हैं कि आदमी है तो औरत से शादी करेगी औरत है तो आदमी से शादी करेगी ये समझने में वो भूल के ये समझने में कि एक नई सच्चाई भी है वो सच्चाई समझने में उन्हें भी वक्त लगता है मेरे पिताजी को बहुत सारा वक्त लगा था समझने में कि मैं एक आदमी हूं आदमी से प्यार कर सकता हूं करके मगर आज वो समझ चुके हैं और आप आपके सच के लिए खड़ी हुई हैं और आपके सच के लिए खड़े होने के वजह से बाकी लोगों में इतनी इतनी आशाएं जगी हैं इतने लोग हैं जो खुद खुद ऐसी जिंदगियां जीते हैं जब उनको उनको ये बताने में भी खुद को बताने में भी शर्म आती है या डर लगता है कि वो होमोसेक्सुअल हैं तो उन सबको जो हिम्मत मिली है सिर्फ आपके आपके सच को अपनाने से यू नो वो हिम्मत जो है वो लहर जो है वो हिम्मत की वो आपके माँ बाप तक भी पहुंचेगी और आपके माँ बाप भी खड़े होंगे आपके साथ
आप हम सब की बेटी हो for Duti? Or if Duti's mom is listening, do you have a message for her?
हाँ जी जरूर पेरेंट्स के ग्रुप है स्वीकार करके वो सारे हम सब माँ बाप जुड़ के उनको आशीर्वाद देंगे और उन्हें अपनाएंगे और यही उम्मीद रखते हैं कि उसके माँ बाप भी जल्दी उससे बात करें
Thank you so much, Duti, for joining us today. This is Goodbye. This is We the People, where we believe it's important to speak your mind, also important to listen. And tonight we listen to someone who always speaks her mind. Ultimately, Duti will be judged as an athlete, but hers is a story that fills us with hope and inspiration. And I hope that you enjoyed being with Duti Chand as much as we did. Thank you. Good night.